نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا آیت 33 سورت مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو دنیاوی زندگی میں خوشحال کر دیا. قرآن پاک میں ان المبذرین کان اخوان الشیاطین, شیاطین کے بھائی کہا گیا ان لوگوں کو جو اسراف اور تبذیر کرتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے میں کوئی علمی باتیں زیادہ نہیں رکھوں گی آپ کے سامنے, لیکن خوشحال زندگی اور بامقصد زندگی دونوں کو کیسے لے کر چلے. یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دولت کو, مال کو, اچھے گھر کو برا نہیں کہا. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ کانسیپٹ اب ختم ہو گیا کہ امیر سارے جہنم میں جائیں گے اور غریبوں نے سب نے جنت میں جانا ہے. یعنی پچھلی جنریشن میں جو تبلیغ کی گئی اس میں یہ دکھایا گیا کہ دین غریب ہے اور دین پہ عمل کرنے کے لیے غریب ہونا شرط ہے. اور اگر آپ کے پاس دولت ہے اور اللہ نے آپ کو حلال کے ساتھ بھی دی ہے, آپ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں, تو بھی اس کے باوجود چونکہ آپ بڑی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, آپ بڑے گھر میں رہتے ہیں, آپ بڑے مہنگے اور اچھے کپڑے پہنتے ہیں, تو اس کا مطلب کہ پھر آپ کو آخر میں تو جہنم میں جانا ہی پڑے گا. یعنی انگلش میں جس کو کہتے ہیں کہ ایدھر اور, یا یہاں کی نعمتیں لے لو یا وہاں کی لے لو. تو یاد رکھیے کہ یہ آج کے دور کا بہت بڑا جہاد ہے میری نظر میں کہ لوگوں کو دین کا صحیح کانسیپٹ دکھایا جائے, کہ جس کی وجہ سے امیر لوگ گلٹ میں نہ رہیں کہ چونکہ اب ہم امیر ہیں تو پھر ہم تو بہت ہی گناہ گار ہیں, اور غریب یہ نہ سوچ لیں کہ نماز پڑھے نہ پڑھے اور جھوٹ چھوڑے نہ چھوڑے, شرک چھوڑے نہ چھوڑے, لیکن ہم نے جنت میں جانا ہے کیونکہ ہم غریب ہیں. عام طور پہ دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں یہی کوئی سچویشن ہے. مثال ہے کہ اگر ایک گاڑی اور ایک سائیکل کی ٹکر ہو جائے تو عام طور پہ لوگ سائیکل والے کی ہمدردی کریں گے اور گاڑی والے کو برا کہیں گے. ہو سکتا ہے کہ سائیکل والے ہی کی غلطی ہو کہ اس نے وہاں کھڑے ہو کر سائیکل نکالی کیوں, جس سے اگلے کی گاڑی بھی خراب ہو گئی. تو ساری بات کا آغاز جس نقطے سے وہ کیا ہے کہ امیر ہونے یا غریب ہونے سے جنت میں جانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ صرف امیر اس لیے جنت میں جائے گا کہ وہ امیر ہے, یا روک لیا جائے گا کہ چونکہ آپ کو وہاں بہت مل گیا تھا تو آپ یہاں نہیں لے سکتے, اور نہ غریب کی غربت اس کے لیے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے نہ رکنے کا. ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے جو بات بڑی اہم ہے, جو پورے آج کے ٹاپک کے اندر ہم دیکھیں گے, کہ امیر کے لیے جنت میں جانا آسان ہے غریب کی نسبت. بہت زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے غریبی کے ساتھ اور بہت تھوڑے لوگ جائیں گے امیری کے ساتھ. یہ بات سمجھ لیجئے. یہ ایسے ہی جیسے آپ اپنے گجرانوالا کے اندرون گلیوں میں جائیں تو کہتے ہیں کہ موٹر سائیکل گزر جاتی ہے, رکشہ بھی گزر جاتا ہے, گاڑی نہیں گزرتی. ہے نا ایسا؟ جب تنگ گلیوں میں سے باریک گاڑی والا گزر جاتا ہے تو آپ رک جاتے ہیں. یہی جنت ہے. امیروں کے راستے کی رکاوٹیں بہت بڑی ہوتی ہیں, ان کے پرابلمز بہت بڑے ہیں, کیونکہ جب بھی کسی نبی نے آ کر یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ یہ دعویٰ کیا, یہ نعرہ لگایا, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ قال الذین استکبروا. نویں پارے کی پہلی آیت دیکھیے, ہر نبی کے دعوت کے مقابلے میں جو اعتراض کیا, جو آبسٹیکلز کھڑے کیے, جو رکاوٹیں کھڑی کی, وہ امیروں نے, اور امیروں میں سے بھی وہ جو مترف تھے, جو آج اصل میں ہمارا ٹاپک ہے مترفین کا, کہ انہوں نے جنہوں نے دنیا کی دولت کو پا کر اس کا اصل مقصد نہیں سمجھا, اور ان کی زندگی میں کیا خیال تھا کہ چونکہ اللہ ہم سے خوش ہے اس لیے میں دے رہا ہوں, اور چونکہ اس نے یہاں دے دیا تو وہاں بھی ضرور دے گا, اور تیسری بات جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب دنیا میں کام رکتا ہے تو ہم پیسہ دیتے ہیں کام لے لیتے ہیں, کہیں اپنا کارڈ دکھاتے ہیں, کہیں اپنا عہدہ دکھاتے ہیں, تو چونکہ یہاں کام نکل آتے ہیں تو وہاں بھی نکلیں گے. یہ پانچ پرابلم بتائے ہیں میں نے آپ کو دو منٹ کے اندر, کہ امیری کے ساتھ یہ خوش فہمیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ چونکہ ہمارے رکے ہوئے کام یہاں بھی ہو جاتے تھے تو وہاں بھی ہو جائیں گے, چونکہ یہاں بھی اپنے عہدے, اپنی دولت, اپنی دھون ساندلی پہ کر لیتے تھے, وہاں بھی ہوگا. یہ غلط فہمی اتنے لوگوں کو ہوئی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں رکھا. ایسے لوگ جن کو دولت ملے लेकिन उस दौलत का वो सही इस्तेमाल करने की बजाय, उसका मकसद समझने की बजाय उसको अपनी ज़ाती जागीर समझे, कुरान ने उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया और उसको मुतरफ कहते हैं। अभी मैंने आपके सामने रखा सूरत मोमिनून 33 में, वातरफ ना हम विल हयात दुनिया, और हमने इनको दुनिया की ज़िंदगी में खुशहाल रखा। इसी तरह सूरत हूद आयत 116-116 में ये लफ्ज़ है, वत्तबल्लज़ीन ज़लमू मा उत्रिफू फीही वकानू मुजरिमीन, ज़ालिम लोग तो उस चीज़ के पीछे ही पड़ गए जिसमें इनको आसूदगी दी गई थी और वो गुनाहगार थे। और तीसरी सबसे हिला देने वाली आयत सूरत अंबिया की आयत नंबर 13 है, वर्जे इला मा उतरिफ तुम फी। अगर इसकी पिछली आयत आपको याद है, सुबह आज मैंने इसकी पहली आयत पे दर्स इत्तफाकन दिया और अभी ये सामने आ गई, जब अल्लाह कहते हैं हमने इनको पकड़ा, इनकी दौलत, इनकी मस्तियों, इनकी ऐश परस्तियों की वजह से जब हमने इनको दुनिया में पकड़ा तो ये भागने लगे, तो अल्लाह ने क्या आवाज़ दी, वर्जियो, वापस जाओ, इला मा उतरिफ तुम फी ही, उन्हीं तरफ जाओ। आगे हम पढ़ते हैं कि अगली आयत में आता है कि उन्हीं घरों में बैठे रहो जिनमें तुम मौज मस्तियाँ करते थे। फिर इसी तरह सूरत मोमिनून 64 में अल्लाह ने फरमाया, अखस न मुतरफीहिम, हमने पकड़ा उनके मुतरफों को। तो याद रखिए, दौलतमंद होना कोई बुरी बात नहीं है, खुशहाली कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दौलत के साथ ऐश परस्ती और उसको लग्जरियस लाइफ बना लेना और उसी की वजह से अपनी औलादों के, कहना चाहिए कि घुटनों में पानी डाल देना कि हाथ खिटला के पानी ना पिए, और वो बच्चे जो अपने माँ बाप से 20 साल छोटे हैं, आज भी आप देखिए, आप इसका एक बड़ा अच्छा सा क्राइटीरियन रख सकते हैं कि बूढ़ा बाप आज भी पैदल चल लेता है, जवान बेटा नहीं चलता। आज भी बूढ़ा बाप जो है वो सुबह की वॉक कर आएगा, जवान बच्चा नहीं करता। क्वेश्चन है बहुत बड़ा, अल्लाह ना करे कि किसी के बच्चे को कोई जिस्मानी बीमारी हो, कोई किसी को कैंसर का मर्ज लग जाए, ये छोटा मर्ज है। आज हम बड़े गौर से देख रहे हैं कि हमारे स्टाइल ऑफ लिविंग में जो एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ आ गई है कि हमारे बच्चे आराम पसंद हो गए, जिसकी वजह से वज़न भी बढ़े, जिनकी वजह से जिस्म में ताकत नहीं रही। आज भी अल्लाह ताला ज़िंदगी दे आपके ख़ानदानों में 70, 80, 90 साल के करीब का जो भी कोई बुज़ुर्ग है, ग्लासेस के बगैर जी रहे, शुगर नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है। इसके बरक्स आप देखिए, छोटी छोटी उम्र में बीमारियाँ, अल्लाह हमारा दुश्मन नहीं है। अल्लाह सुबहाना ताला ने एक मुसलमान को जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाया है वो क्या है कि दौलत उसके हाथों में होती है, उसके दिल में नहीं होती, और वो उस दौलत में से कुछ अपने हिस्से की रखता है। वो कहता है अल्लाह ताला आपका मेरा एक ही खाता है, जितना मुझे चाहिए मैं ले लूँगा, बाकी आपका है। आपको पहले ज़रूरत पड़ गई सारा आपका है, मुझे सारी ज़रूरत पड़ गई पहले मैं ले लूँगा, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपको दूंगा। ये बहुत बड़ा जुर्म है कि हम अमीर हों और इस्लाम गरीब हो, कड़वा जुमला है, लेकिन आज के दौर में मुसलमान अमीर हैं, इस्लाम गरीब है। इसकी बुनियाद जाके देखिए, अगर खाना काबा और बस मस्जिद नबी की मिसाल हमारे सामने ना होती, आज के दौर की मौजूदा मस्जिद नबी और मौजूदा खाना काबा इस तरह का ना होता जितना आज है, तो मैं वल्लाही कसम खा के कह सकती हूँ अल्लाह ताला हमें बदगुमानी से बचाए कि आज जो हज और उमरा करने वाले लोगों की लाइनें लगी हुई हैं ये बहुत मुख्तसर होती। हमारे बच्चे उस गर्मी में रह ही नहीं सकते, उनको वहाँ भी जाके पीसी मिलता है तो वो मुतमईन है, वो वहाँ भी अंजुम होटल में जाके ही सेट हों तो ठीक है, वजह क्या है कि उनको आदत नहीं रही। और बास लोग इतराज़ करते हैं, खाना कब ऐसा क्यों है, वहाँ इतनी लाइटें क्यों लगी हैं, वहाँ इतने एसी क्यों हैं। तो पहली बात यह है कि आप सब, हम तो अपने घरों में मौज मस्ती करें, सारी दुनिया में फिरें घूमें, वीज़े हमारे हाथों में, पासपोर्ट हमारी जेब में, तो क्या अल्लाह का दीन इतना गरीब है कि वर्ल्ड वाइड लोग उसको देखें। आज शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि नहीं, यहाँ रहकर हो भी नहीं सकता अगर नहीं है कि बाहर में वेस्टर्न लोग, नॉन मुस्लिम, खाना काबा और मस्जिद नबी की ये धाक, ऑफकोर्स आज तो सेटेलाइट से देख लीजिए, अल्लाह ने उस जगह को नॉन मुस्लिम से बचा लिया, वरना यकीन कीजिए आज वो भी उनके कब्ज़े में होता। और जिस तरीके से वो लोग काम करते हैं, वो लोग आज वहाँ भी अपने असरात फैला चुके होते, लेकिन मुसलमानों का वहाँ का जोश और गलबा और रोब देकर कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं, वो पूछते हैं यहाँ क्या है कैसा है। तो सवाल पैदा होता है कि खाना काबा और मस्जिद नबी को छोड़ दीजिए, इसके अलावा बरक्स ठीक है यूएई को छोड़ दीजिए, मुस्लिम मुल्कों को छोड़ दें, बहरीन को, कतर को, कुवैत को छोड़ दें, आम तौर पे हम फिर अपने मुल्कों में आ जाएं, सच बताइए हमारा घर कैसा है और अल्लाह का घर कैसा है, हमारा स्टाइल ऑफ लिविंग कैसा है और अल्लाह के दीन का स्टाइल ऑफ लिविंग कैसा है, हमारे मदरसों की हालत क्या, और वो बच्चे जहाँ हमारे वो स्कूल और वो दरसगाहें जहाँ हमारे बच्चे दिन में 7-8 घंटे जाते हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या है। आज आप खुद पूछिए अपने मुआशरे में, आप अपने बच्चे से पूछ लीजिए, आप अपने बच्चों के दोस्तों से पूछ लीजिए कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, मस्जिद में जाके दीन सीखना चाहते हो या स्कूल में जाना चाहते हो। प्रोटोकॉल का फ़र्क देख लीजिए, फीसों का फ़र्क देख लीजिए, टीचर्स के हाल हुलिये का फ़र्क देख लीजिए, अखलाक का फ़र्क देख लीजिए। ये अपने मुंह से बोल बोल के कह रहा है कि आज हमने दीन को गरीब और अपने दुनिया को अमीर बना लिया। और कौमें तभी टूटती हैं, ये जितनी आयतें आपके सामने रखी हैं ये मुतरफीन की पकड़ की आयतें हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हम जब किसी बस्ती पे अजाब लाते हैं तो हम अखज़ना मुतरफी हैं, हम उसके असूदा लोगों को पूछते हैं अब किधर जाते हो, अब तुम्हारे साथ क्या होगा। सूरत फजर आयत 15 आपने मेरा हाल कई दफ़ा पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों को सूरत याद भी है। फम अल इंसान इज़ाम अब्तला हो, इंसान का ये हाल है कि जब उसका रब उसको आजमाता, कोई आजमाइश सोचिए जिस्मानी कल्बी रूहानी अखलाकी कोई भी, फकरमा हूँ व नामा हूँ, जब अल्लाह उसको आजमाता है उस पर करम करता है उसको नेमते देता है, फयकूल और रब्बी अकरमन, कहता है रब ने तो मुझे बहुत इज्जतदार बना दिया। यानी जब दुनिया की दौलत आयश मिलती है तो कहता है जी बस अल्लाह का फजल बड़ा है मेरे ऊपर, चाहे नेमत मिले ना मिले। लेकिन याद रखिए अल्लाह ने दौलत की बांट इसलिए नहीं की कि माशरे में दो सोसाइटीज़ हों। मेरा ख्याल पाकिस्तान वाहिद मुल्क होगा जिसको मैंने देखा है, आप लोगों ने हो सकता है इससे भी कोई ऐसे मुल्क देखे हों कि जहां अमीर कुछ और खाता है और गरीब कुछ और खाता है। फ्रूट की दो तीन किस्में, एक गला सड़ा फल है और एक बेहतरीन फल है, हर चीज़ में ये कैटेगरी है। यकीन कीजिए जिनको हम काफिर कहते हैं उनके मुल्कों में, गवाही ले लीजिए अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना, सब एक ही खाते हैं। एक कंपनी का दूध सबके घरों में आता है, एक शॉप्स है जिनसे हम सब खरीदते हैं। और ये वो मुल्क है कि जहाँ रहना मुश्किल है, इतनी महंगाई लेकिन सबसे सस्ती चीज़ वहाँ खाना है। भूख से कोई नहीं मरता, पानी से कोई नहीं मरता, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, बहुत ग्लैमरी है, घर सबके एक जैसे। ये अलग बात है कि जो बेचारे अफोर्ड नहीं करते वो अपने घरों में दूसरों को साथ रख लें, अंदर शेयरिंग करवा लें, लेकिन अमूमन जो लाइफस्टाइल का फ़र्क हमारे मुल्कों में है वो किसी और मुल्क में नहीं। आपकी मासी की जरूरत नहीं हो सकती कि वो आके आपके साथ सोफे पे बैठ जाए और फ्रिज में से कैन निकाले और पहले जूस पी ले। यहाँ तो हम हो सकता है कि इसको उसकी गुस्ताही के, वहाँ जब मेड आती है तो लोग कहते हैं हेल्प योर सेल्फ, व्हाट डू यू वांट, पहले पी लो, चाय बना लो, वो खुद बनाएं, आप उनको बना दें। इससे क्या पता चलता है कि देखिए अगर इत्तफाकन, लक नहीं हम कहते, इत्तफाकन अगर अल्लाह ने हमें नेमतें दे दी हैं, और वो मासी जो मासी की बेटी की बेटी की बेटी, आप अपने घरों की मासियाँ देखें, शायद उनकी माँ को भी आप जानते हो, उसकी नानी भी आप ही के घरों में काम करती थी, उसका नसीब क्यों नहीं बदल रहा, गरीब गरीब तार और अमीर अमीर तर क्यों ना। आज आप देखिए कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, वो किसके लिए है, वो गरीब के लिए है। और महंगाई कौन करते हैं, हम मुतरफीन करते हैं, जिनके पास है, हैव्स एंड हैव नॉट्स की बांट दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में। तो इससे क्या पता चलता है कि वो सिफत जो कुफार की थी वो मुसलमानों ने अपना ली। पहली बात लिख लीजिए कि ऐश परस्ती, मुतरफ बनना, ये मुसलमान की नहीं ये काफिर की सिफत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत हूद आयत 116 में, टिप्स पे लिख लीजिए कि दुनिया में ऐश परस्ती में खोना ये मुसलमान को नहीं सजता, ये काफिर को सजता है। कुरान की आयत सूरत हूद आयत 116 है, वत्तबल्लज़ीन ज़लमु मा उत्रिफू फीही वकानु मुजरिमीन। अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिम लोग तो उस चीज़ के पीछे पड़ गए जिनमें इनको आसूदगी दी गई थी और वो गुनाहगार लोग थे। और याद रखिए काफिर के पास दौलत आती है ना वो उड़ाता है। आज भी वेस्टर्न स्टाइल में ये बात मारूफ है कि पूरा वीक काम करते और वीकेंड पे उजाड़ देते हैं, उनके पास महीने के एंड पे कुछ नहीं होता। और अगर ये सारा इंटरेस्ट सिस्टम और क्रेडिट कार्ड कल्चर ना हो तो मेरा ख्याल है किसी की जेब में $20 भी नहीं हो सकते। आज बज़ाहर दुनिया के नक्शे पे हम गरीब मुल्क, हमारे मुल्कों पे एड चलती और हम लोग दूसरों की इशारों पे नाचते, जितनी दौलत अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान में पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जितना बड़ा घर यहाँ एक बंदा अफोर्ड करता है, और एक नहीं अब एक के आगे चार चार घर है, हर बच्चे का घर है, बाहर के मुल्कों में कोई तस्वूर भी नहीं करता कि इंटरेस्ट पे लोन लिए बगैर कोई अपना घर बनाए। $10,000 दे दें कहीं से मारी बांधी, सेविंग्स कर लें, कुछ भी कर लें, उसके बाद आपने 20 साल तक किस्त देनी है, $2,000 की है, 200 की है, 500 की, हर एक की फ़र्क है। वो आपने आज ख़रीदा घर, आपका पोता कहीं जाकर उसका मालिक बनेगा, वो भी अगर उसके नसीब में होगा। आप उन मुल्कों में जाकर बताएं हमारे इतने घर हैं, वो कहेंगे फिर आप इधर क्यों धक्के खा रहे हैं, दौलत इधर ज़्यादा है, पैसा इधर ज़्यादा है, सहूलतें इधर ज़्यादा है। लेकिन क्या वजह है कि हम दुनिया की नज़रों में गरीब हैं, अल्लाह को तो सब पता है। वजह इसका यह है कि हमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। जब एक बंदा दुनिया में अपने माल को अपने जाती फायदों और कंफर्ट से कंफर्ट में लगाने लगता है, तो फिर उसका नुकसान क्या होता है? दुनिया में भी अजाब और आखरत में भी अजाब होता है। सूरत मरियम आयत 59 में अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं, फ़खलफ़ मिन बादिहिम खल्फ़ुन, इनके बाद नालायक जानशीन पैदा हो गए। यानी बड़े लोग अच्छे थे लेकिन जो उनकी औलादे थी वो खल्फ़ुन बन गए। क्या किया उन्होंने? पहली चीज़ अदाउस्सलाह। चले इसी क्राइटेरियन पे देखें कि नमाजों को ज़ाया किया। मर्दों की नमाज ज़ाया हो रही है कमाने में और औरतों की माजरत के साथ ज़ाया हो रही है शॉपिंग्स में। आप खुद से पूछें, जो जोड़ा आपने पहनना है इसको खरीदने के दौरान आपकी असर कज़ा हुई, आपकी मगरिब कज़ा हुई? और वल्लाह ही अगर एक डोरी, एक दुपट्टा, एक रस्सी लेते हुए अगर आपकी एक नमाज ज़ाया होगी, वो जोड़ा कभी आपको खुशी नहीं देगा, वो जोड़ा कभी आपके लिए बरकत का जरिया नहीं बनेगा। आज नमाजें पानी की तरह ज़ाया होती दिखती हैं। और दूसरा जुर्म, वत्तबउ शहवात, वो ख्वाहिशों के पीछे बढ़ गए। शहवत की तो कोई हद ही नहीं, उस पर तो मुझे लगता है एक पूरी टॉक होने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि दम निकले, बहुत निकले फिर भी मेरे अरमान कम निकले। आज ख्वाहिशों की तड़प ने, तलब ने हमें ज़िंदगी के मकसद से गाफिल किया। हमारी नमाजें चली गईं, हराम हलाल का फ़र्क निकल गया, खूब से खूब तर की तलाश, अल्हाकुम अत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कल्ला सौफ़ तआलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तआलमून। सारी ज़िंदगी हम ज़मीन के टुकड़ों पे लड़ते हैं, सारी ज़िंदगी माल पे लड़ते हैं, और हम जब कब्र में पहुँचते हैं तो हमारी औलादें उन्हीं माल के टुकड़ों पर लड़ लड़ के मर जाती हैं, लेकिन उनके हाथ में वो नसीब में नहीं होते। मुझे बताइए कि एक मोमिन के पास दौलत इसलिए, माजरत के साथ कितनी रोटियां खाकर बैठे अभी? रोटी तो दिन ब दिन हमारी कम हो रही है, खुराक तो अब हम कम लेना चाहते हैं, अब हम डाइट प्लान पे आ गए, लेकिन हमारी हवस कम नहीं होती। वजह क्या है? हमने कभी किसी दूसरे से विरसा लेते हुए ये सोचा ही नहीं कि ये मैं भी अपने दूसरों के लिए विरसा छोड़ रहा हूँ। अल्लाह के नबी की बात कितनी सच है कि यकूलुल अब्दु माली माली, बंदा कहता रहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसके माल में सिर्फ तीन माल उसके हैं, खा लिया चलो इंजॉय कर लिया, जिस्म से गंदगी बन के निकल गया, पहन लिया पुराना हो गया, यही है ना, यानी खा पी लो, जिसको अपनी जुबान में कहते हैं चले कुछ तो खुश हुए। और तीसरा जो अपने हाथ से अल्लाह के पास पहुँचा दिया, फरमाए बाकी सब वारिसों का और वो उसका नहीं है। डेथ बेड पे एक इंसान कहता है फलां को फलां दे दो, फलां को फलां दे दो, उससे क्या फ़ायदा होगा? अभी कल रात को किसकी बात आप कर रहे थे, कोई आदमी क्या सुना रही थी, कह रहा है वो कह रहा है मैंने अपने मरने के बाद अपनी सारी जायदाद डोनेट कर दी, कुछ भी किसी की कहानी होगी। यानी बाज़ लोग कहते हैं ना मेरे पास सारा लक है, तो माजरत के साथ आप और मैं अपने मरने के बाद सारा अल्लाह को नहीं दे सकते, आज दे सकते हैं, 100 मेरे हैं मैं पूरे दे दूं, कल मरने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा दूंगी तो 33 रुपये 33 पैसे दूंगी, इससे ज़्यादा मुझे इजाज़त ही नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम अपनी ज़िंदगी में खूब मौज करें, अपने बच्चों की दुनिया बनाएं। हमारा गम और हम अमूमन इन्हीं चीज़ों में पड़ा रहता है, खूब से खूब तर की तलाश। सच बताएं, अपने फ्रीज़र को अपने तसव्वुर की आंख में लाएं, फ्रिज को ले आएं, पेंट्री को ले आएं, कितने दिनों का खाना हमारे घरों में मौजूद है? मेरे ख्याल साल का तो चावल आटा भी होगा, लेकिन हमें गम क्या है? हालात ख़राब है, जितना माल ज़्यादा है उसके हालात ज़्यादा ही ख़राब है। ज़रा सा एक किसी सीज़न में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो जाए, कहते हैं ख़राब हो गया, नफ़े में कमी को हम नुकसान समझने लगते हैं। वजह क्या है? आज पे नज़र नहीं, हम चाहते हैं हमारी नस्लों के लिए दौलत बन जाए। और मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ, मैं कहती हूँ आप जो माल कमा रहे हैं अपने बच्चों की जायदादों के लिए, उनके लिए जायदादें बना रहे, आज अपना मिजाज बिगड़ा हुआ है, आज के दिन की फ़िक्र नहीं। वो पैसा जिससे आप दुआएँ ले सकते हैं, वो पैसा जिसको रिश्तेदारों में देकर उनकी दुआएं लें, आपकी उम्र ही लंबी हो जाएगी, अल्लाह के रस्तों में लगाते हैं, आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशखबरियां दे देता है। यकीन कीजिए मैं इतना हैरान होती हूँ कुछ लोगों को देखकर, पूरे पूरे घर अल्लाह के रस्तों में, पूरी पूरी चीज़ें, भैया आपको नहीं चाहिए, लोग कहते हैं इनके बच्चे नहीं होंगे। ऐसे ऐसे सिस्टर्स हैं, मैं लोगों को पानी की तरह अल्लाह के रस्तों में माल देते देखती हूँ, और मैं कहती हूँ कौन है जो कहते हैं लोग दीन पर नहीं देते? वल्लाह ही झूठ है ये। आप दीन का काम अल्लाह के लिए करके देखिए, फिर देखिए अल्लाह कैसे दिलवाते हैं। और वो लोग जिनके चार चार बच्चे हैं, भैया आप ये क्या कर रहे हैं, एक घर आपने दे दिया, अब नहीं, हमारे बच्चे कहते हैं आप दे दें, आप दे दें, हमारे पास बहुत है। ये गिना कहाँ से आता है? ये कब आता है? जब बंदा अल्लाह ताला पे राजी रहता है। माँ बाप जो काम कर रहे होते हैं ना, बच्चे वही करते हैं। आप कहते हैं हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं, सुनते नहीं, लेकिन वो आपको देखते तो हैं, आँख खोलते उस बच्चे ने देखा है सुबह बाप 8 बजे निकल जाता है, और रात सबसे कम वक्त के लिए। मैं कहती हूँ जो मर्द सबसे ज़्यादा माल कमाता है वो घर में सबसे कम वक्त रहता है। सुबह सबसे पहले निकलने वाला और सबसे आखिर में आने वाला कौन शख्स है? वो बाप है। बड़े बड़े घर बन जाते हैं, आपस में इंजॉयमेंट नहीं होती। वजह क्या है कि ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो गया। मैं अपने भाइयों पे लेके बात करूँगी क्योंकि मुझे हक़ है उन पे बात करने का। आप जिस पे मर्जी लें, सच बताइए उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, माल कमाना है? उनके लिए कोई हद है भाई कितना कमाना है? कोई पता नहीं। आप ये बताइए कि आप ये सुबह से रात तक मशीन बने हैं, थोड़ा है क्या? कितने साल का जमा हो गया आपके पास? दूसरे पे ले ले, तीसरे पे ले ले, चौथे। यकीन कीजिए, हमारे मर्दों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तकबिल की जायदादें बनाना है। उसकी वजह से बदमिजाजी से बीवी से लड़ाई हो जाए, कोई बात नहीं, बच्चों को बाप ना देखे। और बाप हो सकता है कभी पैसा बच्चा मांगे तो बाप नाराज़ हो जाए। घरों में मैंने देखा 100-100 हज़ार रुपये झगड़े होते हैं और बैंकों में लाखों और करोड़ों की ट्रांजेक्शन जा रही हैं। क्या देंगे आपको ये बाद में? यही देंगे कि बड़ा चिड़चिड़ा बाप था, बड़ा झगड़ा होता था मां और बाप में पैसे का। वजह क्या? मकसद नहीं पता, मकसद नहीं पता। जुम्मा कज़ा होता, ये मस्जिद है, जाके इस मस्जिद वालों से पूछिए फजर में यहाँ कितनी सफ़ें होती हैं, जोहर में कितनी हैं, असर में कितनी हैं, मगरिब में कितनी हैं, और जुमे को मुझे पता है गली में भी सफ़ें बिछती होंगी। आज इस दौर में हमारा दीन जुमे की नमाज़ का रह गया, वो भी वो जो कहते हैं कि नहीं हमने अभी इस्लाम नहीं छोड़ा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिए उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लम के दौर के सहाबी को देखिए, अपने हमसाए के साथ बारी लगा ली, आधा वक्त तुम काम करना तो मैं नबी की महफिल में बैठ के हदीस सीखूंगा, और जब वो उठते तो ये आते, फिर बाद में फारिग वक्त में उसी का दौर करते, भाई तुमने क्या सुना, तुमने क्या सुना। मुझे बताइए हज़रत उमर फारूक बड़े कारोबारी थे या आज हमारे मर्द कारोबारी हैं? किस माँ ने अपने बेटे को कब प्यार से हाथ रख के पूछा कि बेटा सुना आज का दिन कैसा गुजरा? बेटे का मुंह झुंझला, कहते हैं समझ आ गई आज लॉस हुआ, आज इसकी पार्टी चली गई, आज इसकी मशीन ख़राब हो गई, आज इसके मालिक ने इसको डांट दिया, जो जिसका प्रोफेशन है। आज हम औरतों को भी तो देखें, हमने अपने मर्दों को क्या दिया? इस ऐश और इस दौलत के बेजा इस्तेमाल ने हमारे मर्दों को गुनाहगार कर दिया। और अल्लाह के नबी की यकीन कीजिए वो हदीस आज सच समझ आती है कि एक औरत चार चार मर्दों को जहन्नुम में लेकर जाएगी। हम जब इसराफ करेंगे, जब हम मुबज़रीन बनेंगे, तो मर्द कहाँ हमारी नसीहतें सुने? किस मुंह से हम उनको कहेंगे? वो कहेंगे अब मांगना ज़रा पैसे, देना 1 लाख रुपया मैंने जोड़ा लाना है, तो फिर तुम्हें पूछूंगा, मैं नमाजें पढ़ता हूँ, तुम्हें 1 हज़ार का जोड़ा पहन लो। बात समझने की है। देखिए एक औरत जो है ना, ये मर्द को लेकर चलती है। मैं कभी नहीं मान सकती जो लोग कहते हैं कि मेरा शौहर मेरी नहीं मानता, मर्द नहीं मानते। मर्द तो अपनी तबीयत के एतबार से मजबूर है औरत की मानने का, और जिनके नहीं मानते मेरे ख्याल है वो औरतों की ही गैर हकीमाना कोई बात होगी, या फिर अल्लाह ना करे किसी को ऐसा ही को पल्ले पड़ जाए जिसने किसी की नहीं माननी। लेकिन हम खवातीन अपने मर्दों को सुकून भी दे सकते हैं, इत्मीनान भी दे सकते हैं, खुशी भी दे सकते हैं। आप यकीन कीजिए कि क्वालिटी लाइफ जिसको कहते हैं ना, क्रीम लाइफ, उससे आज हम में से अक्सर महरूम है। मैं देखती रिश्तों में मिठास नहीं है, प्यार नहीं है, वो खलूस नहीं है, रवादारी बहुत है। हम आज दूसरों को खुश करने में अपने करीब वालों से नाराज़ हैं। ज़ाहरी बात है, एक बंदे ने हफ्ते में 4 शादियां अटेंड करनी है, उसने 1 महीने में 10 जगह जाना है, हर शादी में 5,000 रुपये कम से कम बरतने हैं, गाड़ी 3-4 दफ़ा दूसरे शहर जानी है। आपको तो आप एक शादी खा के आते हैं, आप अपने हस्बैंड, बाप, भाई, बेटा जो भी कमाता है उसको पूछिए वो फलां शादी जो आज ख़त्म हुई है उस पर पेट्रोल कितना लगा, कोई सवाल ही नहीं करते हैं। लोग अपनों के लिए तो करते हैं, और उस पर दिया कितना, और उस पर खुद अपनी बेटियां और फलां फलाने कितनों के कपड़े। सिर्फ एक शादी का ख़र्चा मैं और आप जो हमारे करीबी घरों में आती हैं अगर जमा करें, और जो मर्द वो हमारे लिए प्रोवाइड करता है उससे पूछिए ज़रा बताओ इस शादी का अकाउंट्स क्या, तो मेरा हमारी चीखें निकल जाए। हम कहते हैं लड़की की शादी पे 1 करोड़ लगता है, वो लड़की वाले का लगता है, लड़के वाले का 1.25 लगता होगा, मान लीजिए हमारा ऊपर वालों का कितना लगता है? एक शादी पे कितने जोड़े बनते हैं आप मुझे बताइए? सिर्फ एक शादी, माँ के बनते हैं, बहनों के बनते हैं, भाभियों के बनते हैं, और खाला ना बनाए कहेंगे खुशी नहीं है, फूफी ना बनाए कहते हैं लोग भतीजे की शादी की खुशी नहीं, और ससुराल को ना दिए। मैं जोड़ों के खिलाफ बात नहीं कर रही, मैं ये कहती हूँ हम कहाँ घूम रहे हैं? अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं फ़ाइना तस्खबून, तुम जा किधर रहे हो? मुझे ऐसे लगता है इस वक्त हमारा हाल यह कि हमें पता नहीं हम जा किधर रहे हैं। अभी हम आ रहे थे वापडा टाउन से, जल्दी थी और इरादा था वक्त पे ही पहुँचना है, तो एकदम गाड़ी यूं हुई ऐसे, यकीन करें पूरी गाड़ी 3-4 दफ़ा शेक हुई तो फिर रुकी। पता क्या चला कि उन्होंने ज़रा रेस से अदा दी कि अब जल्दी निकलें, तो गाड़ी की हवा निकल गई, और फिर अल्लाह ने सबब भी लगा दिया कि हमारा टायर बाद में ठीक हो गया। मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि इस गाड़ी में बैठे हुए शेक होते हुए पता नहीं चल रहा हम जा किधर रहे हैं। आज अब किसी से पूछे तुम्हारी लिमिट क्या है, तुम्हारी हद क्या है, आप खुद अपने ऊपर, अपने बच्चों पे, अपने मर्दों से जाके पूछिए आखिर आप क्या लेना चाहते हैं ज़िंदगी में। वो असल हम, वो गम जो दुनिया में अल्लाह ने मुझे आपको देकर भेजा था, हमने अल्लाह का बनकर अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ना था और इस दुनिया में अल्लाह का निज़ाम बनाना था। परसों लाहौर का एक दरस, उसमें ये तीन नुक्ते ही थे, खुद अल्लाह के बन जाओ, दूसरों को अल्लाह से जोड़ दो, और तीसरी बात है दुनिया में अल्लाह का निज़ाम नाफिज करो। अपने घर से शुरू कर लो, अपनी खुशी गमी शादी ब्याह अपने तजारत से, अल्लाह के बन जाओ। ये तीन तकाजे हैं आपसे मेरे से रब के। आप ज़रा पूछ के देखिए कि अमूमन लोग किस तरीके से अल्लाह ताला के दीन को इस तरह समझ रहे हैं। दीन का बुलंद तरीन मेयार आज सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात है। जो ये कर ले कहते बड़ा नमाजी है, दैट्स इट। तर्ज ज़िंदगी, मईशत, माशरत, स्टाइल, नबी की सुन्नतें, शादी करनी कैसे और हमने घरदारी कैसे करनी, तिजारत क्या, वो कहते हैं वो अलग मामला। और फिर एंड पे क्या कहते हैं, जी आज के दौर में ये नहीं चलता, ये मौलवियों ने तो मस्जिद में बैठना है, इनको क्या पता। ऐसा नहीं है, असल बात है कि इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा डीफोकस्ड है। जैसे आपकी गाड़ी साइकिल है, उसका चेन उतर जाता है, पूरी साइकिल रुक जाती है। हम इस वक्त अपने ट्रैक से उतरे हुए लोग हैं। आज भी दुनिया में वही लोग खुश और मुतमईन हैं जो असल मकसद के साथ जी रहे हैं कि कुन तुम खैर उम्मत अखरिजत लिन्नास, तुम हो वो बेहतरीन उम्मत जिसने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, जिनको पैदा ही इसलिए किया गया। राह चलते तीन लोगों को रोक कर पूछिए, बताओ मेरे भाई अल्लाह तुमसे क्या चाहता है, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। वो आपके हाल उलिये से आपको दीनदार समझ के कहेगा नमाजें पढ़ने के लिए, कोई कहेगा रोज़ा रखने के लिए। किसी को नहीं पता कि ये नमाज रोज़ा आगे क्या देता है। आपने, मैंने अभी जोहर की नमाज़ पढ़ी, असर की पढ़ी नमाज, आपने भी क्या मिला उससे। ये असर की नमाज से एक एनर्जी जो मिलनी थी आपको और मुझे, उसने मुझे अब दिया क्या। लेकिन आप खाना खाते हैं तो फिर खाना खा के रज़ाई लें और लेट जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल आपका खाना हजम होगा, बल्कि उठेंगे तो जलन हो रही होगी। खाना खाने के बाद कुछ काम करें, उठें भागें तो खाना हजम होता है, चंद घंटों बाद फिर भूख लगती है, फिर खा लेते। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने फजर पढ़ी, क्या मिला, एनर्जी मिली, ताकत मिली, आपके अंदर ईमान की गर्मी आई। आप उसका तकाजा क्या, उठो, फ़फ़िरु इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो। अस्साबिकून अलव्वलून, हम जब नमाज से एनर्जी लेते हैं उसके बाद जितना भाग भाग के नेकियां करते हैं, जोहर तक हमारी एनर्जी लेवल फिर डाउन हुआ होता है, फिर जोहर पढ़ने को खुद दिल जाता है, फिर ये नहीं कहते फिर नमाज हो गई। आज देखिए नमाज पढ़ने अल्लाह कहते हैं मौलवी साहब को और कोई काम ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि जैसे अम्मी को और कोई काम नहीं है, खाने पे खाना खिलाती जाती है, इसी तरह मौलवी साहब नमाज पे नमाज पढ़वाते हैं। हर नमाज के बाद पूछिए मैंने इस एनर्जी को यूज़ कहाँ करता है। मैंने अभी खाना खाया, इस खाने से जो ताकत मिलेगी, इस ताकत से मैंने दिया क्या। देखिए सीधी सी बात है कि आप एक नेकी अपने लिए करते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सुबह के अज़कार, सूरह कहफ़ पढ़ी आपने, रात को सूरह मुल्क पढ़ी आपने, आप जुमे के जुमे दुरूद पढ़ते हैं, ये माजरत कैसा, ये सब आप और मैं अपने लिए करते हैं, इस्लाम को इससे क्या मिलता है। और मैं आपसे पूछूं, आप इस्लाम के लिए क्या कर रहे हैं, क्या जवाब है इसका। मैंने एक जगह पूछा सिस्टर से, कई जगह पूछती हूँ लेकिन एक जगह का याद आ रहा है, तो उस सब ने यही कहा, मैंने ऐसे शुरू किया, अच्छा सुबह से अभी तक आपने इस्लाम के लिए क्या किया, तो वही सुबह उठे, नमाज पढ़ी, सबक पढ़ा और ये वो कर करा के एंड पे। तो मैंने कहा कि माजरत है, ये तो आपने अपने लिए किया, इसके बाद इस्लाम को इससे क्या फ़ायदा। अब वो समझ में आए कि ये क्या होता भाई, इस्लाम के लिए कुछ करना बिल्कुल फ़र्क है। देखिए ना कि आप ना नमाज पढ़ेंगे तो आप इस्लाम से कुफर की पटरी पे पहुंच गए, आप ज़कात नहीं देंगे तो कल आपका माल आपके गले में वो कहना चाहिए कि तख्तियां बनाकर डाला जाएगा। ऐसे ही ना, अगर आप बग़ैर हज किए मर गए, अल्लाह ना करे, तो आपके लिए उस मौत के अंदर कोई खैर नहीं है। ये तो मेरे रिचुअल्स हैं, ये तो फ़राइज थे, इस्लाम का तकाजा तो इससे बहुत ऊपर था। और मैं सोचती हूँ कि सहाबा को वो दीन क्यों नहीं समझ आया जो आज हमें आ गया। हम क्या कहते हैं, सदके भी देते रहो, बकरा भी ज़िबा कर दो, ख्वाब बुरा आया तो 1000 का नोट भी निकाल दो, हज भी करो और उमरा करने के लिए हम रोएंगे, हम हज के। लेकिन हमारी ज़िंदगी में दीन किधर है। आज सच पूछिए जो जनरेशन मैं और आप छोड़ के जा रहे हैं, कितना जियेंगे, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे। क्या मैं और आप अपनी नस्लों से ये तवक्को कर सकते हैं कि हमने इनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की इतनी मोहब्बत डाल दी कि ये अबू जाहल के सामने खड़े होकर पूछते हैं बताओ कौन है दुश्मन खुदा। सुना होगा आपने मुअव्विज़ और मुआज़ का किस्सा। अब्दुल रहमान कहते हैं कि मैदान बदर में दो छोटे छोटे लड़के आए 17-18 साल की उम्र के, चचा अबू जाहल कौन है। कहा तुम क्या पूछ रहे हो भाई, तुम्हारा उससे क्या काम। कहा नहीं, हमारी माँ ने बताया कि वो शख्स मक्का में नबी को गाली देता था। कह रहे अभी उनसे बातें कर रहा था, दूर दिखा कि अबू जाहल के इर्द गिर्द बड़े लोगों ने घेरा डाला हुआ और शुतर मुर्ग का पर लगाया हुआ, उसने बड़ी शांति उसकी। ये दोनों उस बात को सुन के गए और जैसे वो अदरक की गठी निकल जाती है कभी कुंडी डंडे में से, इस तरह भागे और दोनों की तलवार अबू जहल के गले पे थी। क्यों? कि ये शख्स हमारे नबी को गाली देता था, हम इसको जिंदा नहीं रखेंगे। मैं कहती हूँ कि अभी ये लफ्ज़ तो पीछे ही कर दीजिए, हमारे बच्चे तो नमाज के लिए ना उठे। जो बच्चे जो नस्लें फजर पे नहीं उठती, बताइए दुश्मन के आने पे उठेंगी? और याद रखिए खतरा है, वो अल्लाह कहते हैं ना, तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन, सूरह हशर की आखिरी आयतों में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वो हमें भूल गए, हमने उनको उनकी जाने बुला दी। क्या वजह? अगर आप खुदा न खास्ता एक सवाल करिएगा, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, एकदम ना करिएगा, पहले अपने बच्चों की ज़रा सी जहन साजी करें। अल्लाह ना करे रात को सोते में बाप को हार्ट अटैक हो, और हो भी बिल्कुल फजर के करीब, क्या यकीन है कि बच्चे उठ जाएंगे उस वक्त पहली आवाज़ पे? एक बाप ने ये सवाल किया था, जब बच्चे नमाज के लिए नहीं उठते, फजर के लिए खुद नहीं उठते, उठाए उठाए कोशिश के बावजूद, एक रात उन्होंने बैठ के कहा, मुझे ये बताओ कि अब फजर पे तुम नहीं उठते तो अगर मुझे दिल का दौरा पड़े और मैं तुम्हें बुलाऊं तो तुम उठोगे? इसका कोई जवाब नहीं था। जब हम बच्चों को ज़िंदगी में कोई बड़ा मकसद नहीं देते, वो हमारे भी नहीं रहते। आज आप देखिए जिधर जाएंगे आप या आपके शौहर, आज आपका मेरा अपने बच्चों पे कंट्रोल बहुत थोड़ा है, हर एक की अपनी ज़िंदगी। यहाँ तो बड़े ही अच्छे हालात होंगे, मुझे यकीन है, मैं यहाँ बात करते हुए बार दफ़ा रुक जाती हूँ कि मैं क्या बातें आप लोगों से कह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुसलमान मुल्क में, आपका फैमिली सेटअप बड़ा स्ट्रांग है, आपके बच्चे वाकई आपसे प्यार करते हैं, आपकी मानते हैं, शादियों में आप आगे लगा कर उनको लेकर जाते होंगे, दावतों में जाते होंगे। वेस्ट में वैसा नहीं रहा, किसी अपने बच्चे पे आप इतना सा इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते कि मेरे से शादी में चलो, और 98% कपल अकेले जाते हैं। भाई बच्चे किधर? अरे उनकी अपनी ज़िंदगी है। ये क्या बता रहा है? हमारे बीच में डाइवर्शन है। हम लोगों ने वो जो एक ग्लू थी ना, एक वो जो चिपकाने वाली चीज़ थी, उसको खो दिया। नुकसान क्या हुआ इसका कि हम इस दुनिया में इस तरह खोए कि हमें पता ही नहीं चला कि आगे क्या हुआ।